ओम शांति। हम सब बच्चों को बाबा ने इतनी सारी आत्माओं में से चुन करके अपना बनाया है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं में हमारी गिनती है और डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिसकी चाहना सबने रखी है कि परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाए, हमारा जीवन बनाए। और परमात्मा ने तो हम बच्चों का जीवन इतना श्रेष्ठ बना दिया। देवता बनाने से पहले वो हमें ब्राह्मण बनाता है। ब्राह्मण बनाकर ही हमारे अंदर दिव्य गुण धारण करवाता है। परमात्मा ने हम आत्माओं को चुनकर सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनाया। तो ब्राह्मणों की विशेषता है ही ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, अर्थात निरंतर वो सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं, आत्मचिंतन भी करते हैं। आत्मचिंतन के साथ साथ अन्य आत्माओं को भी उस चिंतन के अनुभव में ले जाते हैं और इसके साथ साथ यज्ञ भी खुद करते हैं और यज्ञ करवाते भी हैं, दान भी देते हैं और दान लेते भी हैं। दान रत्नों का भी दिया जाता है और धन का भी दिया जाता है। धन का दान भविष्य के लिए है, ज्ञान रत्नों का दान वर्तमान जीवन के लिए और भविष्य जीवन के लिए है। और साथ साथ सबसे मुख्य धारणा है ब्रह्मचर्य की पालना करना सिखाते हैं कि गृहस्थ में रहते, प्रवृत्ति में रहते, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य बच्चों को करना है। ब्राह्मण अति उत्तम तभी बन सकते हैं, देवी देवताओं की श्रेणी में तभी जा सकते हैं, जब अपने जीवन को इतना महान बनाए, इतना उच्च बना दे, इतना श्रेष्ठ बना दे। तो बाबा ने हम बच्चों के अंदर रूहानियत भरी और हम बच्चों को कल्याणकारी बनाने का बीड़ा उठाया। कल्याणकारी स्थिति हमारी तभी बन सकती है जब हमारे अंदर कुछ विशेषताएं आ जाएं। कल्याणकारी स्थिति अर्थात प्रकृति का कल्याण, विश्व का कल्याण, आत्माओं का कल्याण और हर व्यक्तित्व का कल्याण करने के निमित्त हम आत्माएं हैं। कल्याण की भावना से ओतप्रोत वही व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर रहम की भावना हो। शिव बाबा ने हम आत्माओं के सामने इस वर्तमान दुनिया के अंदर ऐसी आत्माएं सैंपल के रूप में रखी हैं जिन्हें देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उन आत्माओं से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। जैसे दुकानदार सैंपल रखता है, कपड़ा खरीदने जाएंगे तो वो सैंपल दिखाएगा। जब सैंपल पसंद आता है तभी व्यक्ति कपड़ा खरीदता है। तो बाबा ने भी हमारे सामने सैंपल रखे। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को रखा, उनका जीवन श्रेष्ठ बनाया, दिव्य गुणों की मूरत बने, ज्ञान की धारणा से अपने व्यक्तित्व को निखारा, आत्मचिंतन से अपने अंदर रूहानियत भरी, दृष्टि में रूहानियत, बोल में मिठास, कर्मों में श्रेष्ठता धारण की, अर्थात बाबा के ज्ञान का स्वरूप बने। और उनको देखकर अनेक दादियां भी इतनी श्रेष्ठ सैंपल हमारे सामने आई, जिन आत्माओं से हम बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, जिन आत्माओं से अनेक चीजें सीखकर हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। इसीलिए बाबा के जीवन से अनेक बातें सीखने को मिलती हैं कि बाबा अपने मन को कितना शांत रखते थे, कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी समस्या आए, कैसा भी विघ्न आए, लेकिन बाबा उसमें भी अचल और अडोल, एक रस अवस्था, और सदैव ड्रामा के पट्टे पर विराजमान। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, और हम बच्चे भी ऐसे अपनी स्थिति बनाएं, लेकिन डावाडोल हो जाते हैं, स्थिति हमारी बन नहीं पाती है, या बनते बनते फिर विचलित हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में आजकल सब कोई भी कर्म करते हुए तुरंत उसका प्रत्यक्ष फल चाहते हैं, और अगर फल नहीं मिलता तो संकल्प चलने लगते हैं, मन शांत नहीं रहता, नेगेटिव सोच चलने लगता है। जबकि बाबा ने हम बच्चों को सकारात्मक सोच दिया है, सकारात्मक चिंतन दिया है कि बच्चे इस चिंतन से तुम श्रेष्ठ बन सकते हो, ऊंचे बन सकते हो, देवी देवता बन सकते हो। और सकारात्मक चिंतन जो भक्ति मार्ग में हम देवी देवताओं के सामने हमेशा दुख से कहते आए हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाहीं, आपे ही तरस पड़ो, कि भगवान मैं दुखी हूं, अशांत हूं, मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। हमने क्या किया, नेगेटिव बातें ही भगवान के सामने कही। तो जैसा संकल्प रखेंगे वैसे बन जाएंगे। जब सोच ही हमारी ऐसी रही तो हम बन गए तमो प्रधान। तो बाबा ने आकर सबसे पहले हमारी सोच को सुधारा और कहा, बच्चे ये चिंतन करो कि मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं और परम पिता परमात्मा की संतान हूं, देवी देवता बनने वाली हूं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाली हूं, इसीलिए जब हम इतना पवित्र और श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, सकारात्मक चिंतन करते करते हम देवी देवता बन ही जाते हैं। सत्युगी दुनिया, उसका आगमन हो ही जाता है। बाबा ने हम बच्चों को काम दिया कि बच्चे तुम्हें सत्युगी दुनिया को लाना है, उसके लिए अपने जीवन में रहम दिल बन सारे विश्व का कल्याण करने का भाव रखना है। रहम की भावना से ओतप्रोत हम आत्माएं जब अपने आप को देखती हैं तो ये समझ में आता है कि अभी हम बाप समान बनने का लक्ष्य रखकर उनके अनुसार हमारी चलन, बोल और कर्म तीनों ही चीजें वैसी होनी चाहिए। रूहानियत भरी हो, रूहानियत तब भर सकती है जब आत्मिक चिंतन निरंतर करते रहें और उस आत्मिक चिंतन में ही हम अपने अंदर रूहानियत भर सकते हैं और रूहानियत भरकर हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों के ऊपर ये बीड़ा रखा है, ये लक्ष्य दिया है हमको कि बच्चे तुमको सर्वात्माओं को कल्याण की भावना रख उनको निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। जैसे बाबा में भी रहम की भावना थी, कितना बाबा सबके कल्याण की बात सोचता था, सब आत्माओं के प्रति भावना रहती थी बाबा की कि सर्व का कल्याण हो, सर्व के अंदर सुख शांति आए, जो तड़पती और प्यासी आत्माएं हैं वो श्रेष्ठ बन जाएं, वो महान बन जाएं, ऊंची उठ जाएं। और बाबा हमेशा वही भाव रखकर सब आत्माओं की विशेषता को देखते थे। जो भी बच्चे बाबा से मिलने आते थे तो बाबा उनकी विशेषता को जान जाता था और उस विशेषता के आधार पर उनको कार्य देता था। बाबा के मन में हमेशा ये भाव रहता था कि बाबा को पहचान कर इस बच्चे ने बाबा का हाथ पकड़ा है, कैसा भी बच्चा है लेकिन भगवान का बच्चा है, तो भगवान का बच्चा होने के नाते इस बच्चे को उंगली पकड़कर आगे चलाना है। भविष्य में इसका लक्ष्य क्या होगा, भविष्य में आत्मा कितनी महान पहुंच जाएगी, इस बात को कोई नहीं जानता सिवाय बाबा के। और ऐसा देखने में आया कि बाबा ने जिन आत्माओं को आगे बढ़ाया, जिन आत्माओं के सामने कोई लक्ष्य दिया, वो आत्माएं निरंतर बाबा का नाम बाला करती रही और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ गई। तो बाबा ने बच्चों को शांत स्थिति के साथ साथ प्रेम स्वरूप की धारणा करना भी सिखाया कि बच्चे प्रेम की मूरत बनो, हरेक आत्मा से प्रेम का व्यवहार करो, हरेक आत्मा के प्रति ये भाव रखो कि इस आत्मा को कैसे हम प्रेम से आगे बढ़ाएं। किसी के अवगुणों का वर्णन मत करो, न चिंतन करो, न सोचो, क्योंकि सोचेंगे तो वही हमारी धारणा बन जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के गुणों को देखो, प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखो, हरेक की विशेषताओं को देखकर उन्हें आगे बढ़ाओ। तो बाबा ने उन सब बातों को फॉलो कर और सर्व बच्चों को आगे बढ़ाया। हम सब बच्चे बाबा के सामने जब भी गए तो बाबा ने विशेषताओं को देखा और उस अनुसार स्नेह दिया, प्रेम दिया और साथ साथ मनोकामना भी पूर्ण की। और अब भी बाबा कर रहे हैं अव्यक्त रूप से, और हम आत्माओं को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने हमारे अंदर प्रेम का बीज डाला। इसके साथ साथ बाबा कहते, बच्चे विकारों के ऊपर तुम बच्चों को शक्ति रूप बनना है। शक्तियां अर्थात देवियों का स्वरूप, जिसे शिव शक्ति कहा जाता है। पांच विकारों के ऊपर तुम बच्चों को संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त करनी है। विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे तभी निर्माण चित बन जाएंगे। निर्माण बनने से तुम्हारी भाषा भी मीठी हो जाएगी। इसीलिए तमोप्रधान भाषा को समाप्त कर निर्मल भाषा, मीठी भाषा बोलो और मीठे बोल बोलो। किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी प्रकार का, जिसको कहा जाए दूषित वचन न निकालो, परंतु मीठे बोल आत्माओं के सामने बोलने से हरेक आत्मा उस अनुसार बन जाती है। प्रकृति में भी ऐसा ही होता है कि अगर किसी पौधे के सामने आप निरंतर कोई अपशब्द बोलते रहेंगे तो पौधा मुरझा जाएगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है बहुतों ने। और अगर आप मीठे बोल बोलेंगे तो पौधा पल्लवित हो जाएगा। तो आत्माओं की तो बात ही निराली है, वो तो फिर भी चैतन्य है। अगर किसी भी आत्मा के सामने हम अच्छे बोल बोलेंगे, उनको महान बनाने के बोल बोलेंगे, उनको ऊपर उठाने के बोल बोलेंगे, तो वो आत्मा वैसी ही बन जाएगी। और हम निरंतर बोलते रहेंगे दूषित बोल उसके लिए, तो वो आत्मा निराशाजनक हो जाएगी, उत्साह उसका कम हो जाएगा, उसके अंदर हीनता का भाव आ जाएगा और हमेशा वो ये सोचेगी कि मैं कोई काम की नहीं। तो बाबा हमेशा कहते, बच्चे सर्व आत्माओं में उमंग उत्साह भरो और उमंग उत्साह भरकर उन्हें उड़ती कला में ले जाओ। हीनता का भाव ना आने दो, क्योंकि हीनता का भाव अगर आता है तो व्यक्ति डामाडोल हो जाता है। अचल और अडोल अपनी स्थिति बनाने के लिए हमारा जो मंथन है वो पावरफुल होना चाहिए और हमेशा हमारा अभ्यास रहे कि हम आत्माएं तो बाबा के कहे अनुसार चलने वाली हैं और ड्रामा पर पक्की होकर चल रही हैं। ड्रामा अनुसार ही हमारा कर्तव्य चल रहा है। जितना हम ड्रामा को पक्का करेंगे उतना दुख की लहर नहीं आएगी, अशांति की सोच नहीं चलेगी, हलचल में नहीं आएंगे और निरंतर उमंग उत्साह में आकर आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे जितना हो सके अपनी स्थिति की चेकिंग करो, तुम्हें सर्व का कल्याण करना है और कल्याण करने के लिए गुणों को धारण करना बहुत आवश्यक है। जितना हम अपने मन को शांत रखेंगे, हलचल से परे रखेंगे, उतना ही कल्याण की भावना हरेक के प्रति जागृत होगी। बुद्धि में दिव्यता हो, दिव्य सोच हो हमारा, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसे बोल निकलते हैं, वैसी ही हमारी दृष्टि हो जाती है और फिर उसी अनुसार हमारा कर्म चलता है। आज अगर किसी के प्रति हमको थोड़ा भी गुस्सा आता है तो गुस्से के कारण मन में अशांति हो जाती है, बुद्धि भी विचलित हो जाती है, सोच भी वैसा चलने लगता है और सोचते सोचते बोल भी वैसा ही हो जाता है, फिर बोल से भी अपशब्द निकलने लगते हैं और कर्म, हमारे कर्म भी फिर उसी अनुसार हो जाते हैं। एक दो का एक दो से लिंक है। इसीलिए कल्याण की भावना रखकर ही हमको आगे बढ़ना है। बाबा हम बच्चों को निरंतर ये बात सिखाते रहते हैं। रोज मुरली में बाबा कोई ना कोई ऐसी बात हम बच्चों को सिखाते हैं जिसको धारण करके हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, महान बना सकते हैं। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है इतना ऊंचा बनने का। बाबा कहते, बच्चे लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी वैसा धारण करो। प्रैक्टिकल ज्ञान के स्वरूप बनना है, धारणा स्वरूप। जब हम ज्ञान के धारणा स्वरूप बनेंगे तभी हमें इस बात की प्राप्ति होगी कि हम कैसे कल्याण का भाव अपने मन में रख सकें। आज बाबा से, दादियों से हम निरंतर ये बात सीखते रहते हैं। हमें याद है कि जब हम बड़ी दादी से मिलते थे, दादी प्रकाशमणि जी से, तो दादी हमेशा ये समझाती थी, कोई ना कोई नया टोटका देती थी हमेशा कि इस प्रकार से तुम्हारा जीवन होना चाहिए। दादी ने एक दफे कहा कि सबके साथ बहुत प्रेम का व्यवहार रखो, किसी की बात को अपने चित्त पर न रखो, बात आई और गई होनी चाहिए, उसका चिंतन नहीं चलना चाहिए। अगर वो बात आपके चित्त पर होगी तो आप हमेशा उसका चिंतन करते रहोगे। देखने में आता है ना कि अगर हम किसी के कोई अवगुण को देख लेते हैं तो उस अवगुण का ही चिंतन करते रहते हैं और चिंतन करते करते थकते नहीं। एक को सुनाएंगे, दो को सुनाएंगे, परंतु दादी हमेशा कहती थी कि हम किसी के चिंतन में क्यों, बाबा ने हमको उस चिंतन में थोड़ा डाला है। तो हमें किसी के अवगुणों को अपने चित्त पर नहीं रखना, मन में संकल्प भी नहीं चलाना। अगर किसी बात को देखते हैं तो हम बाबा को सुनाकर हल्के हो जाएं, लेकिन उसका सोच नहीं चलाएं। हम अपने लौकिक व्यवहार में ही देखें कि हमने ज्ञान को कितना धारण किया है, आज हम कितना शांत रहते हैं, विचलित तो नहीं होते। बहुत देखने में आता है कि कई आत्माएं जब आपके संपर्क में आती हैं तो जब वो आपके पास आती हैं तो वो सोचती हैं कि सबसे पहले हम अपनी बात सुनाएं। अगर आप किसी से बात कर रहे होंगे तो वो उसको भी सोचेंगे इनको भी कट किया जाए और पहले हम अपना सुनाएं फिर दूसरे क्या सुने। माने इतनी भी शांति हमारे अंदर नहीं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बात पहले कह रहा है तो हम शांति से उस बात को सुन लें और उसके बाद अपनी बात कहें। तो ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा है कि बाबा कहते बच्चे समाने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। समाने की शक्ति अगर है तो हम सामने वाले की बात को सुनकर फिर बाद में उस बात को अपनी बात को कहेंगे, नहीं तो हम सब बातों को कट कर अपनी ही बात कहने की सोचते हैं और ये अशांति केवल संकल्पों से दिखाई नहीं देती, केवल सोच से दिखाई नहीं देती, परंतु हमारी एक्ट में भी आ जाती है। हमारे शरीर के कर्मिंद्रियों से भी दिखाई देती है। हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं तो आप देखेंगे जो बहुत विचलित व्यक्ति होता है उसका चलना भी इतना फास्ट होता है कि बात मत पूछो। बहुत शांति से वो नहीं चलेगा, शांति से बात नहीं करेगा। अगर उसकी बात को नहीं सुना जाए पहले तो अशांत हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। उसको लगता है कि पहले मुझे सुना जाए। तो बाबा की बातों का हमें अनुसरण करना है। बाबा ने जो हमको शांत चित्त रहने के लिए कहा तो शांत माना एकदम शांत, और ऐसा शांत कि हमारे कर्म इंद्रियों से भी ये नजर ना आए कि हम विचलित हैं, हम अशांत हैं। तो हमारा सोच भी वैसा हो जाता है। इसीलिए बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में जब हम धारण करते हैं तभी हम सर्वात्माओं के प्रति रहम का भाव रख सकते हैं। नहीं तो हम सोचते हैं कि हमको पहले ही अपना कार्य कराना चाहिए इस व्यक्ति से, अगर वो व्यक्ति हमारा कार्य नहीं करता तो हम नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और बोलना बंद कर देते हैं, अर्थात हमारा व्यवहार जो है वो परिवर्तित हो जाता है। आप खुद अपने ऊपर ध्यान दें, अपने जीवन पर विचार करें तो आपको लगेगा कि सच में हम ऐसा व्यवहार करते हैं। जबकि बाबा ने तो हमको इन सब बातों से न्यारा रहने का इशारा दिया है कि बच्चे क्रोध भी नहीं करना, लोभ भी नहीं करना, मोह भी नहीं करना, अहंकार में भी नहीं आना। अहंकार, अहंकार तो बहुत सूक्ष्म भी होता है, जो व्यक्ति के अंदर अहम भाव पैदा कर देता है, चाहे वो शुद्ध अहंकार हो चाहे अशुद्ध अहंकार हो। अशुद्ध अहंकार आया तो हम रावण बन जाते हैं, शुद्ध अहंकार आता है तो हम इंद्र बन जाते हैं। देवी देवताओं में भी जब अपनेपन का अहंकार आ जाता है तो वो उसका सैंपल भक्ति मार्ग में इंद्र के रूप में रखा हुआ है कि हर बार उसको जोश आ जाता और वो अपनी बात पूरी कराने के लिए क्या नहीं करता। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे ना आपको रावण बनना है न इंद्र बनना है, परंतु आपको सर्व आत्माओं के कल्याण की हित सोचना है कि कैसे सर्व आत्माओं का कल्याण किया जाए। ज्ञान सुनाकर, चाहे मनसा सेवा के माध्यम से, चाहे उन आत्माओं को शक्तिशाली बनाकर, जो बाबा ने हम बच्चों को शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों का दान देकर हम उन आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर सकते हैं। वो तभी कर सकते हैं जब पहले हम धारणा मूर्त बनेंगे। जो बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल में धारणा कराई है उसके अनुसार बनेंगे। हमने देखा है कि जब साकार बाबा पांडव भवन में थे, उस समय बाबा बच्चों को कैसे खुश रखते थे। हमें याद है कि हम उस समय बहुत छोटे थे और जब नए नए ज्ञान में आए और पहली दफे बाबा से मिले तो बाबा की दृष्टि ने इतना अपना बना लिया, क्योंकि स्नेह की दृष्टि इतनी थी, इतनी पावरफुल दृष्टि थी, उस दृष्टि में इतना करंट भरा था कि ये तो हमको पता ही नहीं चला कि बाबा ने हम बच्चों को अपना कब बनाया। ऐसा कोई संकल्प नहीं था कि हम ब्रह्मा कुमारी बनेंगे या ये ज्ञान सुनेंगे, लेकिन बाबा इतनी पावरफुल अपनी स्थिति रखते थे, उस स्थिति के आधार पर आज बच्चों को अपना बना लेते थे। तो बाबा से ही हमने सीखा कि हमको भी अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाना है कि कैसे हम तड़पती हुई प्यासी अशांत आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन देकर, सकाश देकर, उनको बाबा का बच्चा बना दे। तो बाबा हमेशा साकार रूप में सर्व आत्माओं को खुश रखते थे, सबको संतुष्ट रखते थे, सर्व के प्रति कितना ध्यान देते थे। एक दफे हमें याद है कि गांव की पार्टी आई हुई थी पांडव भवन में, ठंड का टाइम था और वो रात को सोए तो बाबा खास चक्कर लगाने गए, देखने के लिए गए कि बच्चे जो हैं वो ठंड में ठिठुर तो नहीं रहे हैं। जब बाबा ने देखा कि नहीं, सब कंबल रजाई ओढ़कर सो रहे हैं, तो बाबा को संतुष्टि हुई। माने बाबा इतना ध्यान रखता था, बाबा इतना बच्चों के प्रति सोचता था, बाबा हमेशा ही समझता था कि ये सब बच्चे बाप के घर में आए हैं तो सुख चैन इनको प्राप्त होना चाहिए, शांति की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। यही बात बाबा से जो दादियों ने सीखी है वो दादियों में भी दिखाई देती है। बड़ी दादी तो इन बातों का बहुत ध्यान रखती थी और वर्तमान में भी जो हमारी दादियां हैं वो भी हम बच्चों का कितना ध्यान रखती हैं कि कितनी भी तबीयत खराब हो, कितना भी शारीरिक व्याधि हो, लेकिन इतने भाई बहन दूर से आए हैं तो उनसे मिलना जरूर चाहिए, उनको दृष्टि जरूर देनी चाहिए। ऐसा संकल्प हमारे जितने भी बड़े हैं, चाहे वो भाई हैं चाहे दादियां हैं, वो सब इतना ध्यान रखते हैं, वैसी पालना देते हैं, क्योंकि ये पालना के गुण उन्होंने बाबा से सीखे हैं। बाबा ने कितनी भी तबीयत खराब हुई बाबा की, अंत में भी बाबा ने क्लास में बच्चों से विदाई ली और उसके बाद बाबा अव्यक्त हुए। तो इसी रीति से हमारे बड़े भी हम सब बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं कि ये बच्चे बाबा के घर में आए हैं तो कुछ न कुछ लेकर जरूर जाएं, यहां से कोई नई प्रेरणा लेकर जाएं, नई बातें लेकर जाएं और जीवन में धारण करें, प्रैक्टिकल स्वरूप बन। तो हम बच्चों को भी ये संकल्प होना चाहिए कि हम बाबा की श्रीमत प्रमाण चलेंगे और जो बाबा कहता है उस अनुसार स्वरूप बनेंगे, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप बनना माना प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना। हमारा जीवन इतना प्रैक्टिकल स्वरूप हो, इतनी श्रेष्ठता हो हमारे अंदर, हम इतने महान बन जाएं कि सर्व आत्माओं को ये भासना आए कि ये इस दुनिया के अंदर कोई अलौकिक व्यक्तित्व है। तो बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा उठाना चाहता है, कितना महान बनाना चाहता है, इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को हमें निरंतर फॉलो करना चाहिए। बाबा कितना महान है कि उसने हमें चुन करके, हमारे पर रहम करके, हमारे पर तरस करके हमको ज्ञान योग की शिक्षा देकर महान बनाने का कार्य किया है, दिव्य गुणों की मूरत बनाने का कार्य किया है। मूर्ति ढल रहा है बाबा। जब कोई कलाकार मूर्ति बनाता है तो वो इतनी सुंदर बनाता है कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट ना दिखाई दे। तो बाबा ने भी हम बच्चों को इतनी सुंदर मूरत बनाया है। भविष्य की मूर्तियां देखो आप, जो मंदिरों में स्थापित हुई भी हैं, उनको देखकर सब देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो इतनी सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। और मूर्तियां कैसे बनी? शक्तियों को धारण करने से, गुणों को धारण करने से। बाबा ने एक एक मूर्ति को बैठकर सुंदर बना दिया और सुंदर बनाकर मंदिर के देवता बना दिया कि द्वापर युग से तुम अनेक आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सको। सत्ययुग में तो देवी देवता हैं ही, लेकिन इसके अलावा द्वापर से कलयुग अंत तक भी सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले देवी देवता हम रहते हैं। हरेक आत्मा की इच्छा को पूर्ण करने का कार्य बाबा ने हमको सौंपा है कि भगवान तो है ही, पर भगवान ने जो शक्तियां दी हैं, जो दिव्यता भरी है, उसका उपयोग भी आप बच्चों को करना है। तो बाबा हम बच्चों को अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए योग की शिक्षा दे रहे हैं, और योगी भी, कर्म योगी भी बनना है और निरंतर योगी भी बनना है। निरंतर योगी हम तभी बन सकते हैं जब सबके पति हमारा ये संकल्प हो कि हरेक आत्मा का कल्याण करने के निमित्त हम बने हैं, अर्थात कल्याणकारी स्थिति हमारी बहुत पावरफुल होनी चाहिए। निरंतर कल्याण की भावना हमारे अंदर से जागृत होती रहे। एक दफे कहीं प्रोग्राम हो रहा था तो वहां पर कुछ वीआईपीस का संगठन था, और उस संगठन के अंदर सब अपना अनुभव सुना रहे थे। तो एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया और कहा कि हमने यहां आकर के ओम शांति का जो पाठ सीखा है, उस पाठ से हम बहुत फायदा लेते हैं। तो क्या फायदा लिया उन्होंने? वो कोई भी आत्मा उनके सामने आती थी ऑफिस में, जब टेबल के ऊपर कोई भी आत्मा आती थी तो वो प्रत्येक आत्मा के लिए ये संकल्प करते थे कि भगवान इसको शांति देना, और फिर बात करते थे उससे, माने अंदर ही अंदर वो संकल्प करते थे, बोले उससे कुछ भी कैसी भी उत्तेजित होकर के भी अगर आत्मा आती थी तो वो वाइब्रेशन लेने के बाद वो शांति से ही बात करके जाती थी। अब देखिए, संबंध संपर्क में वो व्यक्ति है और वो अपने ज्ञान से प्रैक्टिकल धारणा क्या लिए कि सर्वात्माओं के प्रति शांति का भाव रहे, और हम आत्माएं भी अगर अपनी शक्तियों को जागृत करें और जागृत करके वो शक्तियों का भाव सर्व को दें, समाने की शक्ति हो, चाहे सहयोग की शक्ति हो, चाहे सहन शक्ति हो, कोई भी शक्ति का दान अगर आने वाले भाई बहन जो हमारे संपर्क में आते हैं, जो मिलते हैं, जो रोजमर्रा हमसे बातचीत करते हैं, हमारे संकल्पों से वो भाव अगर हम उनको देते हैं, तो उन आत्माओं को उन शक्तियों की महसूसता होती है। इसीलिए हमें निरंतर इसका अभ्यास करना चाहिए। जितना अभ्यास करेंगे, बाबा कहते हैं ना बच्चे, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, और कितना करो? निरंतर होना चाहिए। संकल्प हमारा एक मिनट का भी वेस्ट न जाए, और एक मिनट का संकल्प अगर वेस्ट नहीं जाएगा तो निरंतर का जो भाव है वो हमें तो प्राप्ति कराता ही है। हम तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अशरीरी स्थिति को प्राप्त करेंगे ही, परंतु अन्य आत्माओं को भी उस आत्मिक स्थिति का अनुभव कराएगा, क्योंकि आत्मा का मुख्य स्वरूप है ही शांत। शांति की स्थिति में स्थित रहने से हम अन्य आत्माओं को भी शांति का अनुभव करा सकते हैं। आप अभ्यास करके देखिए और अभ्यास करने से आपको लगेगा कि जब आप खुद शांत हैं तो आप किसी के भी प्रति कोई भी नकारात्मक सोच नहीं सोच सकेंगे, जिसको बाबा कहते नेगेटिव सोच। वो नेगेटिव सोच नहीं चलेगा। जब सोच नहीं चलेगा तो दृष्टि भी रूहानियत वाली होगी, मुख के बोल भी मीठे होंगे, प्यारे होंगे, सद्भावना वाले होंगे, रहम का भाव लिए हुए होंगे। हरेक व्यक्ति जो भी हमारे पास आता है किसी न किसी इच्छा से आता है, कोई न कोई संकल्प लेकर आता है। तो हम दाता के बच्चे हैं तो हमें दान देने वाला बनना है, निरंतर दान देते जाएं। जब हम निरंतर दान देंगे तो दान भी किस चीज का देना है? धन का दान तो करते ही हैं, परंतु दिव्य गुणों का भी दान है, ज्ञान का भी दान है, योग का भी दान है। और साथ साथ हम आत्माएं जब दान करती हैं तो उस दान से सामने वाली आत्मा को भी यही प्रतीत होता है कि मुझे राहत मिल रही है, मुझे इनकी दृष्टि से रहम का भाव प्राप्त हो रहा है, इनके मन से जो कल्याण की भावना निकल रही है वो मेरे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। तो हम सामने वाले जो भी व्यक्ति हमारे सामने आ रहे हैं उन सब के अंदर इस तरह का भाव पैदा करें, तो क्या होगा कि जब सर्व को ये अनुभव होगा कि हमारे अंदर ये शक्तियां, ये दान जो दे रहे हैं वो रहम का भाव दे रहे हैं, हमारे अंदर कल्याण करने की स्थिति जागृत कर रहे हैं, तो उन्हें खुशी होगी, उमंग उत्साह आएगा। और कोई भी इस प्रकार के अकल्याण की भावना अगर उनके अंदर होगी तो वो भी कल्याणकारी बन जाएगी। हम सब ने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है। उस जीवन कहानी में था कि बाबा को मारने के लिए एक दफे एक व्यक्ति बाबा के सामने पहुंचे, लेकिन जैसे ही बाबा के सामने पहुंचे बाबा ने उनको बहुत प्यार से आओ बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो वो पानी पानी हो गया, और पानी पानी होने से उसने बाबा को कहा कि बाबा मैं तो आपको मारने के लिए आया था, लेकिन आपके शब्दों को सुनकर, आपके वाइब्रेशन को देखकर, अनुभव करके मैं सब कुछ भूल गया। ऐसा अनुभव बहुत दफे दादियों के सामने भी होता है। आप कई दफे संकल्प लेकर जाते हैं कि हम ऐसा दादी को कहेंगे, ऐसा दादी को कहेंगे, लेकिन जब आप जाते हो तो सब कुछ भूल जाते हो, कुछ याद ही नहीं रहता। और फिर विचार चलता, अरे हम क्या क्या सोच कर आए थे और हम तो कुछ बोल ही नहीं सके। उसका कारण है कि जो दादियों ने अपनी शांत स्थिति को इतना पावरफुल बनाया है कि उसके वाइब्रेशन उनके चारों तरफ एक ओरा स्थापित करते हैं, और उस ओरे के अंदर जो भी व्यक्ति जाएगा वो एकदम शांत हो जाएगा, निसंकल्प हो जाएगा। ऐसा बाबा के समय, बाबा के सामने जाने से भी होता था। सब यही कहते थे, बाबा के पास गए, इतना सोच के गए थे कि बाबा को ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, लेकिन कुछ भी सुना नहीं पाए और बिना सुनाए ही वापस आ गए। तो बाबा जैसी स्थिति हम आत्माओं को भी बनानी है। हमारे यहां पर जहां हम बैठे हों वहां ऐसा ओरा बन जाए कि उस ओरे के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आए तो वो एकदम शांत हो जाए। कितनी भी हलचल से आए, कितना भी हलचल लेकर आए, कितना भी उतार चढ़ाव लेकर आए, लेकिन सर्व आत्माओं को शांत कर देना ये बहुत बड़ा एक काम है। तो बाबा ने ऐसा इतना बड़ा होमवर्क हम बच्चों को दिया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा होमवर्क है। और इस बड़े होमवर्क को करने के लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और अभ्यास कौन सा? निरंतर का अभ्यास, अर्थात एक रस हम उस अभ्यास को करते रहें। सारा दिन हमारा अभ्यास अगर चलता रहेगा तो हम अपने चारों तरफ एक ओरा स्थापित कर लेंगे, सूक्ष्म लाइट जिसको कहते हैं ना। आप सबने भी देखा होगा चित्र में कि आप लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखिए तो वहां दो ताज दिखाई देते हैं, एक ताज रत्न जड़ित है और दूसरा ताज है लाइट का ताज जिसको ओरा बोलते हैं। और वो ताज जो है वो बहुत पावरफुल होता है। रत्न जड़ी ताज जो है वो तो आप एक जगह उतार के रख देंगे तो उसका कोई अनुभव नहीं होगा, लेकिन वो जो लाइट का ताज है वो बहुत पावरफुल होता है और वो अपने चारों तरफ एक ओज स्थापित करता है, जिस ओज के माध्यम से हम हरेक व्यक्ति को वाइब्रेशन दे सकते हैं, उसको अनुभव हो सकता है उन सब चीजों का। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने ओरा को बहुत पावरफुल बनाओ, उस ओज को बहुत पावरफुल बनाओ। पावरफुल बनाने के लिए आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। कोई भी चीज का जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तभी वो हमको प्राप्त होती है। तो इसीलिए निरंतर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और निरंतर अभ्यास के लिए जरूरी है कि हम सर्व आत्माओं के प्रति रहम का भाव रखें। रहम केवल बोलने तक सीमित न हो, परंतु दृष्टि में भी रहम होना चाहिए, बोल में भी रहम होना चाहिए और कर्मों से भी हम अपने अंदर रहम धारण करें। किसी भी आत्मा, चाहे वो प्रकृति हो, प्रकृति के प्रति भी रहम चाहिए। अगर आप रहम रखेंगे तो प्रकृति भी आपके ऊपर रहम रखेगी। विनाश के समय प्रकृति का सीन चलेगा ना, तो वो भी फिर आपको उस रहम की दृष्टि रखकर आपको छोड़ देगी। नहीं तो फिर प्रकृति का तो प्रचंड जो विकराल रूप है वो देखते नहीं बनेगा। तो इसीलिए चाहे वो जानवर हैं उनके प्रति भी रहम, अर्थात प्रकृति, सृष्टि, मनुष्यात्माएं, सर्व आत्माओं के प्रति हमारे अंदर रहम का भाव हो। और रहम के भाव के द्वारा हम सर्व को वाइब्रेशन देते रहें और सर्व के प्रति कल्याणमय भाव रखकर सर्व का कल्याण करने का सोचें, अर्थात हर आत्मा का कल्याण हो। कोई भी हमारे पास आता है ना तो अंदर संकल्प करना चाहिए कि बाबा इस आत्मा का कल्याण करना, बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। जब हम ऐसा भाव रखते हैं तो हरेक आत्मा का कल्याण अपने आप होता जाता है। उसके लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, परंतु अपने संकल्पों को पावरफुल बनाना पड़ता है। जितना हम पावरफुल बनाएंगे, जितनी हमारी स्थिति पावरफुल होगी, उतना हम सर्व आत्माओं के कल्याण का भाव रखकर उन आत्माओं को गति सद्गति का रास्ता दिखा सकेंगे। ओम शांति।
रहम दिल और कल्याणकारी स्थिति बनाने की अनेक युक्तियां दीदी जी ने हमारे समक्ष रखा और उसके साथ ही साकार बाबा के कुछ अनुभव से भी हमें लाभान्वित कराया। और दीदी जी ने विशेषकर अपने चित्त को शांत रखकर, अपने चित्त की शांति के द्वारा, अंदर की शांति के द्वारा बाबा ने जो हमें होमवर्क, बहुत बड़ा होमवर्क हमारे सामने रखा है कि हम सभी आत्माओं को शांति का दान दे और आने वाले आत्माओं को शांत करके ही भेजे, इसके ऊपर ज्यादातर स्ट्रेस दे के दीदी ने जो बताया, हम सब अवश्य ही उसको अपने जीवन में लाएंगे। और अभी हम दो मिनट, और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी हम दो मिनट योग में बैठेंगे और विद्या बहन बेलगाम से आई हुई तेरदास सेंटर की गीत सुनाएंगी। बाबा की याद में हम सब बैठे।
सूरत जिसकी चांद सी है, दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए हर पल प्यारा बाबा है ऐसा मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा हो प्यारे बाबा, दिव्य अनुपम प्रेम पावन सब पर वो का जीवन सुख सावन के गुण मोती से सजाते हैं, दिव्य अनुपम प्रेम पावन सब पर वो बरसाते हैं, सब का जीवन सुख सावन के गुण मोती से सजाते हैं, रोम रोम झरता मूर्त झरता झरना जैसा मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा हो प्यारे बाबा, फरिश्तों की वो बादशाह सागर से पार कराने बनते वो पतवान है, फरिश्तों की वो बादशाह है धरती पर अवतार है, दुख सागर से पार कराने बनते वो पतवान का रहे सारे जगत को महके मधुबन जैसा।